life of a yogi.
योगी वर्ड
सुनते ही मन में आता है एक इमेज, एक पिक्चर, एक होली मैन विथ सैफ्रन ड्रेस और लॉन्ग बियर्ड, रिटायर्ड, कंटेंटेड लाइफ, है ना? लेकिन आज के समय में अगर एक क्वालिफाइड पर्सन भी कंटेंटेड है विद द सेल्फ और दूसरों से भी कंटेंट है, फिर हम क्यों सीखें? व्हाई आई शुड लर्न लाइफ ऑफ ए योगी? ये हमारा प्रश्न है संतोष दीदी जी से.
वास्तव में देखा जाए तो हमेशा कहा जाता है सब दिन होतने एक समान, समय परिवर्तनशील है. कभी हम देखते हैं कि हम लोगों के सामने समय बहुत हमारे फेवर में चलता है, कभी कभी देखने में आता है कि समय हमारे अनफेवर में होता है. जिस समय परिस्थितियां हमारे फेवर में होती हैं, उस समय तो हमारा जीवन बहुत सुचारू रूप से चलता है, बड़ी खुशी से रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं. परंतु जिस समय परिस्थितियां हमारे अपोजिट में होती है, उस समय पर हमारी स्थिति जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है. तो योग ये ऐसी चीज है जो कैसी भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति में हम अपनी स्थिति को एक रस रख सकते हैं. इसीलिए हर एक व्यक्ति को योग सीखने की बहुत ही आवश्यकता है, ऐसा मैं समझती हूँ.
आज जो हमारे समक्ष महान योगीज हैं, जिनके निजी जीवन से, उनके अनुभवों से, उनके गुणों से, उनके प्रैक्टिकल कर्मों से हम जानेंगे कि योगी कौन होता है. वैसे आप सबने आज अपने आप को जाना कि हम आत्मा हैं, हम एक शक्ति हैं, और हमने यह पांच तत्वों से बना यह शरीर, ये कॉस्ट्यूम धारण किया. जब धारण करते और जब छोड़ते हैं उसके बीच का पीरियड है, उसे कहते हैं जीवन. और देखने को तो सबको वही दो आंख, दो हाथ, दो पैर हैं, फिर भी योगी डिफरेंट कैसे होता है? एक नॉर्मल लाइफ लिविंग और एक योगी लाइफ, इन दोनों में अंतर क्या है? ये दीदी बताएंगे.
योगी जीवन में और जो नॉर्मल लाइफ है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है. योगी अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके चल सकता है, अपने मन के ऊपर उसका पूरा उसका अधिकार होता है. उसकी जीवन जो है वो सदैव सिंपल है, औरों के आगे एक सैंपल. उसके जो कर्म है योगी के, वो सुखदायी कर्म है. उसके जो विचार है वो परोपकार के विचार है. तो योगी जो जीता है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता है, परंतु सारे विश्व के लिए जीता है. और जो साधारण लाइफ होती है वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीने के लिए होती है. तो उनके दृष्टिकोण में ही बहुत बड़ा फर्क है. वो विश्व के लिए जीता है, वो अपने लिए जीता है, ये बड़ा महान अंतर.
मेरा अगला क्वेश्चन है आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी से. जीवन का एक किनारा है भोगी, अर्थात इस बॉडी कॉस्ट्यूम से सिर्फ और सिर्फ सेंशुअल प्लेजर्स एंजॉय करना, मटेरियल वर्ल्ड में रहना और सिर्फ आउटर वर्ल्ड को ही देखना. और जीवन का दूसरा किनारा है सन्यासी, सबसे निवृत्त, सिर्फ वैरागी. लेकिन योगी के लिए कहा जाता है कि वो संसार और वैराग्य दोनों को साथ लेके चलता है. उसका जीवन कमल पुष्प की तरह होता है उसका रिश्ता संसार से भी है तो उसका रिश्ता परमात्मा से भी है, तो ये कैसे हो सकता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक जब मैं इंजीनियरिंग पास करके ONGC में कार्यरत था, उस समय मेरे सामने यह प्रश्न अक्सर पैदा होता था कि एक तरफ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और दूसरी तरफ इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का बहुत पुराना सदस्य होने के नाते योगी जीवन वो सामने रहता था। तो इन सब के लिए मैं समझता हूँ एक की वर्ड अगर हम अपने जीवन में धारण करके रखेंगे तो जीवन बहुत सहज हो जाएगा, और वो की वर्ड है बैलेंस। बैलेंस अगर रहता है तो जीवन बहुत सुचारू रूप से चलता है। कैसा बैलेंस? फॉर एग्जाम्पल एक है डिटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट का बैलेंस। तो जब हम कार्यरत रहते हैं तो इन्वॉल्व रहते हैं वर्क में पूरा, लेकिन साथ में डिटैचमेंट भी अगर रहता है जो योग सिखाता है, तो ये दोनों डायगनली अपोजिट चीज कैसे साथ में रह सकती हैं? गीता में ही कहा है बहुत अच्छा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। वास्तव में इसका अगर यथार्थ भाव देखा जाए तो भाव ये है कि कर्म करते वक्त फुल इन्वॉल्वमेंट, और माइंड सोल बॉडी इंटेलेक्ट कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, लेकिन फल की इच्छा न करो। नॉर्मली तो ये होता नहीं है, क्योंकि हम कर्म ही तब करते हैं जब फल पहले माइंड में होता है। आप सब लोग भी यहाँ आए, आपके माइंड में था भाई ब्रह्मा कुमारी यहाँ जा रहे हैं, योग ज्ञान की बात सुनने को मिलेंगी, तो आपने अपना रिजर्वेशन आदि करा के आए, तो फल माइंड में। इसका वास्तव में भाव ये है कि कर्म करते वक्त फुल इन्वॉल्वमेंट, बट वाइल एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट हैव इमोशनल डिटैचमेंट, सो दैट इवन वेन द रिजल्ट इज नॉट एज पर अवर एक्सपेक्टेशंस वी विल नॉट कम डाउन टू द अर्थ। तो उस समय रिजल्ट के वक्त हमारा इमोशनल अटैचमेंट नहीं बल्कि डिटैचमेंट होना चाहिए, लेकिन कार्य करते वक्त उस वक्त संपूर्ण हमारा इन्वॉल्वमेंट। इसी तरह और है अलर्ट एंड रिलैक्स, इनका जो है बैलेंस। तो अभी आपने शायद सुना भी होगा कल, या जानते होंगे ब्रह्मा कुमारीज की जो चीफ हैं दादी जानकी जी, उनका एक बार जब टेस्ट हुआ तो ब्रेन का, तो उसमें देखा गया कि वाइल शी वॉज टॉकिंग वर्किंग एवरीथिंग शी वॉज हैविंग द डेल्टा वेव्स, यानी कि माइंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में था बट इट वॉज अलर्ट एक्टिव। तो ये चाहिए कि जब हम कार्यरत हों उस समय हमारे माइंड में कोई स्ट्रेस ना हो, यही तो जरूरत है, आवश्यकता। इसी तरह बिजी एंड इजी, उसका बैलेंस, बिजी भी रहें लेकिन लाइफ में इजी भी रहें, बहुत टेंशन नहीं, वी आर टुडे वी हैव टू रेस अगेंस्ट द टाइम अगेंस्ट टारगेट्स अगेंस्ट सो मेनी थिंग्स, हमें भागना पड़ता है उनके पीछे, लेकिन वो सब होते हुए भी कार्यरत होते हुए भी एफिशिएंट भी रहे, लेकिन रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड जितनी रहेगी जो योग के साथ आती है। और राजयोग जो यहां सिखाया जाता है उसका विशेष लक्षण यही है। बहुत राजयोगों के एक्सपेरिमेंट्स हुए, मेरा भी एक्सपेरिमेंट हुआ था रशिया में जब 2 साल पहले था, तो उन्होंने बताया कि राजयोगियों के जब जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम पाते हैं कि दे आर मेंटली अलर्ट एक्टिव बट साइमल्टेनियसली वेरी रिलैक्स्ड। तो ये चीजों की आवश्यकता है जीवन में, और जितना जितना ये आवश्यकता होंगे, इसके अलावा और भी बैलेंसेज हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मेजर बैलेंस जिनकी आवश्यकता है, डायगनली अपोजिट बट एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। धन्यवाद।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योग मतलब कनेक्शन रिलेशन यूनियन लिंक, और इस अर्थ के हिसाब से देखें तो आप सबको जानकर खुशी होगी कि आप हम सब योगी ही हैं, क्योंकि हम सबका किसी न किसी व्यक्ति स्थान वस्तु जगह कार्य से कनेक्शन तो है ही। लेकिन आज जो हमारे बीच मंच पे उपस्थित हैं, इन सब का योग ईश्वर से है, इनका योग सत्कर्मों से है, इनका योग विश्व सेवा से है, और इसलिए हम इन्हें सिर्फ योगी नहीं लेकिन राजयोगी कहते हैं। तो मेरा आदरणीय गीता दीदी जी से क्वेश्चन है कि योगी तो सभी हैं, परंतु एक योगी राजयोगी कब बनता है?
देखिए, योग शब्द ही अलौकिकता का सूचक है। बल हम सबका बुद्धि योग कहीं ना कहीं अटैच है, पर उसको योगी नहीं कहते हैं। योगी उनको कहते हैं जो देह भान से ऊपर उस परम शक्ति परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं, ताकि उस परमात्मा पिता के ज्ञान गुण और शक्तियों को हम अपने जीवन में खींच सके। अगर हमारा व्यक्ति वस्तु वैभव प्रवृत्ति बातों से बुद्धि योग जुड़ा है तो वहां से हमें क्या मिलेगा? कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ कमजोरियां, कुछ अपूर्णता। लेकिन जो सदा पावन है, परम है, सर्वशक्तिमान है, उस पिता से जब हम योग लगाते हैं तो हमें पूर्ण मात्रा में वो शक्तियां और गुण मिलते हैं, जिससे हम अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संयम ला सकते हैं, विजय पा सकते हैं, उनको शुद्ध और दिव्य बना सकते हैं। और जब हम आत्मा मन बुद्धि संस्कार से ज्ञान स्वरूप शांतिपूर्ण योगयुक्त हो जाते हैं तो कर्मेंद्रियों से भी श्रेष्ठ कर्म होंगे, हमारा कर्मेंद्रियों पर भी अधिकार रहेगा। तो राजयोगी का अर्थ ही ये है कि जिससे हम कर्मेंद्रियों के राजा बन सके, जीवन और जगत के राजों को समझ सके और अपने आप में वो रॉयल दिव्य मैनर्स को ला सके।
आदरणीय करुणा भाई जी से हम ये जानना चाहेंगे, व्हाई यू थॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल कम्युनिटी ब्रह्म कुमारी? कौन सी योगी लाइफ ने आपको इंस्पायर किया राजयोगी बनने के लिए?
मुझे इन्होंने बचपन का याद दिलाए, जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो 21 साल का था, आज इस शरीर का 78 चल रहा है। जब मैं फाउंडर से मिला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे फाउंडर है पिताश्री जी, वो उस समय का मल्टी बिलियनियर थे। उनके बच्चे डायमंड से खेलते थे, जैसे पत्थरों से खेलते हैं हम लोग गोली, तो इतने रिच थे। और भारत के जितने राजाएं महाराजाएं थे उनके साथ उनका संबंध था, यहां तक लंदन की रानी भी बाबा के बने हुए डायमंड्स के हार पहनते थे, इनकी बेटी हमको सुनाते थे। तो ऐसे व्यक्ति एक साधारण रूप में सामने देखा मैंने, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है। और इतने खुश थे, और इनकी जो पर्सनैलिटी, क्योंकि बचपन में रामायण पढ़ने का बहुत शौक था, तो हमारे नाना जी के साथ जब बारिश के दिन होते हैं गांव में यही करते हैं, तो उसमें राम के जो पर्सनैलिटी थी वो मुझे बिल्कुल उनमें नजर आ रहा था कि भाई इनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा, मैं इंजीनियर हूं, मैं वहां एचएमटी में काम कर रहा था बेंगलोर में, और विदेश जाने का फ्रांस फ्रेंच और जर्मनी के लोगों के साथ काम करता था। तो मैंने पिताजी से पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बच्चा हूं अभी, यंग हूं, युवा हूं। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो बेटा, अपने लिए तो सब जीते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा जी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों के लिए भी जी सको और उसमें भी आपको आनंद आ सके? तो मैं उस समय पर सोचने लगा कि भाई, दुनिया में तो सभी अपने लिए ही जी रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने इसके लिए। अब मुझे कुछ और बताया जा रहा है कि भाई दूसरों के लिए भी जीने का, तो मुझे तुरंत याद आया, तो जीवन में खुशी एक साधारण रूप में, एक अंधे को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करते हैं तो खुशी होती है कि भाई हमने आज कुछ अच्छा काम किया। तो मैंने सोचा कि भाई बाबा कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ ट्राई तो करूं। फिर भी मैंने एक बात पूछा, तो बाबा का तो ये था, तो सारा विश्व में इस प्रकार का शिक्षा होना चाहिए जैसे आज हम देख रहे हैं 140 देशों में। बाबा को वो विजन था, तो मैंने बाबा से उस वक्त ये प्रश्न पूछा, बाबा मैं साउथ से आया हूं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो उस तरफ आया ही नहीं है अभी, तो मैं एक बनने से क्या होगा, क्या ये दुनिया का परिवर्तन होगा? तो वो हंसने लगे, बच्चे मैं भी ऐसा सोचता तो तुम यहां तक आता? तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बाबा ने जो कहा कि दूसरों को हम खुश कर सके, उनके काम में आ सके, तो क्या किया जाए। ये ज्ञान भी आप जो सुन रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, तो हमारी बहनों को यही खुशी होती है कि आपको अच्छा लगता है तो उनको पहले खुशी हो रही है, आपको हो या ना हो उनको बहुत खुशी होती है, हम अपनी बहनों में देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने भी साउथ में एक्सपेरिमेंट किया पहले, कि दूसरों को थोड़ा कुछ सुनाने का, भाई शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कैसे कर्म करना चाहिए। तो जब मैंने ये शुरू किया तो उनकी जो खुशी जो होता ही था, पर उनसे ज्यादा मुझे खुशी होने लगा। तो जब मैंने ये अभ्यास किया तो आप सोच सकते हैं, 20-21 साल का युवा आज आपके सामने है और खुशी है। तो यही एक प्रेरणा मुझे मिली कि राजयोगी बनने से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आज भी मैं इंजीनियरिंग का काम यहाँ, मीडिया का काम यहाँ, सब कुछ कर रहा हूँ। एक चैनल चल रहा है, आप सब देख सकते हैं, पीस ऑफ माइंड के नाम से। पर जो शांति है, जो सुख है, वो जब दूसरों को हम सुख देते हैं वो सबसे ज्यादा है। ये प्रेरणा से मैं योगी बना हूँ।
आदरणीय करुणा भाई जी, आपके इसी अनुभव में एक और प्रश्न है कि जैसे हम सब सुनते हैं, नदी न पिए जल अपना, पेड़ न खाए फल अपना, हे मानव सेवा में तू कर ले जीवन सफल अपना। अब आपके सामने सब बैठे हैं, वो फैमिली पर्सन है, प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो सफल जीवन कैसे ये महसूस करें सेवा में, या सेवा में सफलता फील करें, या सफलता में सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या करें?
आप सबको देख के मुझे ये विश्वास है कि आप सभी अपने अपने प्रोफेशन में सफल ही है, ऐसा लग रहा है। जो ऐसा फील करते हैं हाथ उठाए। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं जीवन में आपने भी बहुतों को अपनी जीवन का एग्जाम्पल से, अनुभव से सहयोग दिए हैं। भले किसी न किसी कारण से होगा, वो आपके कंपनी में होंगे, आपके रिलेशन में होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो आपने जाने अनजाने किसी भी तरह से आपके अनुभव से दूसरों का भी भला किया है। और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको ये पहला थॉट ये दिया जाता है कि सर्व जने सुखिनो भवन्तु। भाई और कुछ नहीं कर सकते हो, इतना तो करो कि भला होवे, सर्व का भला होवे। वो कौन है, क्या है, ये नहीं हम सोचते हैं। तो हमसे किसी का भला होता है तो होने दो, नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि किसी के सामने या कोई सामने आता है, पहले प्रश्न आता है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्यों आया, तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है। भले हम केपेबल है, हम सामना कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी सिचुएशन को पास कर सकते हैं, फिर भी हमारे सामने पहले क्वेश्चन ये आते, ये कौन है, ये क्यों आया, कुछ तो होगा, हमारे से ही लेने लिए ही आता होगा। तो इस प्रकार से ये होता है। पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको पहला पाठ ये सिखाया जाता है कि हम एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पिता परमात्मा की हम संतान है। जो हमारे मन में केवल केवल जो भी है उसका भी कल्याण हो, तो इस प्रकार की शिक्षा हमको मिलने से हमारे जीवन में इतना आसान और खुशी सदाई देखते हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जहां भी आप जाओ सब बहनें खुश, उनके फेस में खुशी होती है, आप आए आपकी क्या सेवा करें। तो ये एक ही शिक्षा से हम लोग इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि आप भी इसका आनंद प्राप्त करेंगे।
थैंक यू। हमने बचपन से योगी की एक प्रचलित क्वालिटी सुनी थी कि योगी जो है वो हमेशा इस संसार की ड्यूअलिटीज में समरस रहता है, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति सब में सेम। तो लगता था क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, क्या इफेक्ट नहीं होगा इन बातों का। तो ये कैसे हो सकता है, ये मेरा प्रश्न है आदरणीय संतोष दीदी जी से, कि हम कैसे हर ड्यूअलिटीज में समान रहें संसार की बातों में।
सर्दी गर्मी में समान रहना तो एक छोटी सी बात है, परंतु जीवन में मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, इन सब परिस्थितियों में समान रहना, इसके लिए साक्षीपन की स्थिति चाहिए। जितना हम साक्षी होकर के देखते हैं, जो गीता में भी वर्णित है, न्यारे होकर के देखते हैं मुझे क्या करना है और मुझे क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये जब भी हमें समझ में आ जाता है तो कोई मान करे या अपमान करे, अगर हम सामने वाले के अपशब्दों को नहीं मानते हैं तो हमें फील नहीं होता। परंतु हम लोग क्या करते हैं, जल्दी सामने वालों के ऐसे जो अपशब्द होते हैं उसको मान लेते हैं तो हमें उससे दुख होता है। कोई सम्मान करता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, परंतु कोई कुछ भी देता है, मुझे सामने वाले से क्या लेना है, समझो ये एक छोटा सा रुमाल है, अगर हम सामने वाले को ये रुमाल देते हैं और वो नहीं लेता है तो मैं एक स्थूल चीज भी उसको जबरदस्ती नहीं दे सकती, तो कोई अपमान मेरे को अपशब्द कैसे जबरदस्ती दे सकता है। तो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये सिखाता है कि आपको चाहे आपका कोई अपमान करे, चाहे आपको कोई मान देवे या नहीं देवे, दुख है उसको भी आप सुख में परिवर्तित कर सकते हो, सिर्फ आप अपने दृष्टिकोण को बदली करो। तो दृष्टिकोण को बदली करने के लिए अपने विचारों को बदली करना पड़ता है। जब हमारे विचार बदली हो जाते हैं कि हम सुखदाता के बच्चे हैं तो हमें औरों को सुख देना है, जब ये कर्म क्षेत्र है हम जैसी चीज सामने वाले को देते वैसी हमको वापस मिलती है, तो अगर हम सामने वाले को सुख देते हैं तो हमारे को भी जरूर सुख मिलता है, हम सामने वाले को मान देते हैं तो जरूर हमको उसके द्वारा सम्मान मिलता है। तो इसीलिए पहले दाता के बच्चे होने के नाते अगर हम अच्छा ही देना सीख जाते हैं तो जरूर उसकी रिजल्ट हमें भी अच्छी मिलती है।
थैंक यू। हम ऐसे कई सफल व्यक्तियों से मिले हैं जो कार्मिक लॉ में तो मानते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम हर गुणों के साथ कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलना ही है, और जब हम कर्म करते हैं और फल मिलता है, सक्सेस मिलती ही है, तो फिर वाई गॉड। एक योगी के लिए परमात्मा की क्या भूमिका है, ये मेरा प्रश्न है आदरणीय गीता दीदी जी से, कि योगी के जीवन में गॉड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या रोल प्ले करते हैं।
देखो हर चीज का एक सोर्स होता है ना, जहां से हमें प्राप्ति होती है, आज हमें प्रकाश चाहिए तो नेचुरली हमें सूर्य के तरफ सन्मुख होना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेट रोशनी का सोर्स सूर्य है। हमें घर में सुगंध चाहिए तो हमें अगरबत्ती जलानी है या इसेंस बॉटल रखनी है, तो वो सोर्स है जहां से हमें सुगंध मिलती है। हमें अपने घर में नलके में पानी चाहिए तो हमें वाटर टैंक से कनेक्ट होना ही होगा ना, क्योंकि सोर्स वो है। तो इस प्रकार अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सद्गुण चाहिए, उसका अल्टीमेट सोर्स परमात्मा है, सोर्स ऑफ वैल्यूज या सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। वो एक इटर्नल सोर्स है और वो सदा सागर है, भंडार है। तो जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं, हम पूर्ण मात्रा में और सदा काल के लिए ये चीजें अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। आज एक महात्मा से, एक धर्मात्मा से वो जहां तक पहुंचे हैं उतना वो हमें प्राप्त करा सकेंगे, परंतु वो सब भी अल्टीमेट किसकी याद से महान बने हैं। तो क्यों नहीं हम उस परम शक्ति से ही जुड़े, ताकि हम पूर्ण मात्रा में और सदा काल के लिए ये ज्ञान गुण शक्तियां अपने में धारण कर सके। तो परमात्मा के बिगैर तो योग संभव ही नहीं है, वो योग ही उनसे लगाना है। इसलिए भाई गॉड का सवाल नहीं है, मस्ट, वो तो कंपलसरी है कि परमात्मा से ही बुद्धि योग लगाने से हमें पूर्ण प्राप्ति।
थैंक यू। आप सबको देखकर सभा में भी सबकी इच्छा हो रही है कि हम भी योगी बने, लेकिन हम सबके पास ऐसी कोई इंक्लूसिव लिस्ट तो है नहीं कि ये सारे अच्छे कर्म हैं, ये सारे बुरे कर्म हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन योगी के लिए हमने सुना है वो हमेशा धर्म और कर्म में बैलेंस रखता है, अर्थात उसके हर कर्म में धारणा होती है, उसके हर एक्शन में स्पिरिचुअलिटी होती है। तो मेरा आदरणीय मोहन भाई जी से ये क्वेश्चन है कि हर कर्म में एक ऐसी कौन सी धारणा इंक्लूड करें जो उनका हर एक्शन राइट एक्शन ही बनता जाए।
ये सिचुएशन यूजुअली सभी के सामने जीवन में आती है कि सम टाइम कंफ्लिक्ट स्टेट ऑफ माइंड, ये करूं या ये करूं। गलत और अच्छे के बीच में डिफरेंस करना तो बड़ा सहज है, लेकिन अच्छे और अच्छे के बीच में कई बार डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी बात बताती है जो राजयोग सिखाते हैं कि व्हाट इज फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता है जीवन में वो है हार्मनी विद इन द सेल्फ। हार्मनी कई लेवल पर एग्जिस्ट करती है, हार्मनी विद इन द सेल्फ, हार्मनी विद अदर ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी, हार्मनी विद एनिमल्स। आजकल तो हार्मनी विद नेचर की बात हो रही है, और ये नेचर के जो फरी देख रहे हैं ये कितना कि नेचर के साथ डिसहार्मनी हो गई है, लेकिन इन सब का आधार है हार्मनी विद इन द सेल्फ। और हार्मनी विद इन द सेल्फ, सुसंवादिता हमारे अंदर, उसका भाव क्या है? हार्मनी बिटवीन थ्री थिंग्स, हार्मनी बिटवीन अवर हेड, हार्मनी बिटवीन हेड, हार्ट एंड हैंड, तीन चीजों के बीच में, हमारे मस्तिष्क, दिमाग, दिल और हाथ, क्योंकि ये तीनों के बीच में ही कई बार पहले दोनों के बीच में ही कंफ्लिक्ट होता है, हेड एंड हार्ट। जैसा बहन जी बता रहे थे, कई चीज राइट लगती है लॉजिकली हेड, लेकिन हार्ट उसकी गवाही नहीं देता, एंड समटाइम वाइस वर्सा, रिवर्स। तो इसलिए ये तीनों कैसे एक लाइन पर चलें, ये राजयोग से बहुत क्लैरिटी आ जाती है थॉट्स के अंदर कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए ये हार्मनी एक पहले जब आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, तीसरा हैंड, एक्शन। वो एक्शन सबके सामने विजिबल होता है, हेड में क्या चल रहा है, हार्ट में क्या चल रहा है, वो विजिबल नहीं होता, वो हमारे तक ही रहता है। लेकिन जब कर्म करते हैं वो सबके सामने वही डिफाइन करता है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले ये डिस्टिंग्विश करें, और ये क्लैरिटी आती है मन से, विचारों से, क्योंकि इनका कनेक्शन विचार से है। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है मन के लिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो इसके लिए मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है कि फॉर योर सेल्फ, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन में डील करना पड़ता है दूसरे लोगों से, स्टाफ से, सीनियर से, सबॉर्डिनेट सबसे, तो इसलिए वाइल डीलिंग विद योर सेल्फ यूज योर हेड, और वाइल डीलिंग विद अदर्स यूज योर हार्ट, दिल की बात। तो उससे क्या होगा कि जहां पर हार्ट इन्वॉल्व होगा वहां पर वैल्यूज का समावेश होगा, उसकी प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, और जहां हम सीधा लॉ 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 की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे, वहां पर मानवता जैसे एक सेकंड सीट ले लेगी और इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट में कम अप। तो अभी आवश्यकता क्या है इस बात की कि हमारा एक प्रॉपर बैलेंस ठीक रहे हमारी थिंकिंग के बीच में, और सही बात वही होती है जहां दोनों गवाही दें, जहां हमारी कॉन्शियसनेस हमें बाइट ना करे, और कॉन्शियसनेस में इतनी क्लीनलीनेस आती जाती है योग के द्वारा, और योग से ही जब ये क्लैरिटी अगर आ जाती है फिर हमारे सारे एक्शन राइटियस हो जाते हैं, और राइटियस एक्शन के साथ साथ फिर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक टर्म यूज करते हैं ब्लेम गेम, कोई चीज अगर ठीक नहीं होती है तो अक्सर करके हम दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, इसने ऐसा करा इसलिए ऐसा हो गया, ये गलत बात हो गई। लेकिन वास्तव में हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, और इसीलिए योग में एक बात कही जाती है जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें यूजुअली तीन पार्ट में कर देते हैं, आधि, व्याधि और उपाधि, यानी फिजिकल प्रॉब्लम, सोशल, फाइनेंशियल, मेंटल, ऑल प्रॉब्लम्स। लेकिन इन सब का उपाय क्या है? समाधि। समाधि मींस गो इनसाइड, अंदर जाना, और अंदर जाके जब हम देखते हैं, झांकते हैं, तो हमें उसका रियल सॉल्यूशन मिलता है व्हेन वी आर इन साइलेंस। इसीलिए यहां पर ये एक बात बहुत अच्छी बताते हैं, जब कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि योगियों के सामने प्रॉब्लम नहीं आती, और योगी चाहे कहीं भी कर्म करें प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम के राइटियस सॉल्यूशन के लिए ये आवश्यकता है हम कुछ देर एकांत निकाल के डीप इनसाइड जाएं, जैसे समाधिस्थ होंगे, और फिर अंदर जाके वो सॉल्यूशन राइटियस जो मिलेगा, अक्सर हमने जीवन में देखा है बहुत वर्षों तक वो परफेक्ट सॉल्यूशन होता है, और उसमें सफलता जीवन में समाई रहती है। थैंक यू।
थैंक यू। आपने गाइड किया कि फोकस ऑन सेल्फ, जब भी कोई बात आए गो विद इन, अपने आप को कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करके तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमारे जो सीरीज ऑफ प्रश्न आएंगे वो है योगी की पर्सनालिटी के ऊपर। सचमुच आप सब बहुत लकी हैं, क्योंकि अब तक समाज ने, दुनिया ने, पेरेंट्स ने ये तो सिखाया बच्चों को कि पढ़ लिख कर बड़े हो जाना, ये कमाना, घर बनाना, अच्छी चीजें प्राप्त करना, अच्छे रिश्ते बनाना, ये सब कुछ तो जरूर सिखाया गया है, लेकिन आज तक किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, पेरेंट्स ने, मीडिया ने कभी हमें ये नहीं सिखाया बेटा इस बात में आपको ऐसा नहीं ऐसा सोचना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं ऐसा फील करना चाहिए। हमारी सोच को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे बोल को, हमारे कर्मों को डिजाइन करने के लिए किसी ने गाइड नहीं किया, और इसलिए आप बहुत लकी हैं कि अब आपको वो गाइडेंस इन महान योगियों से इस राउंड में मिलेगी। आप जानते हैं कहा गया है कि हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है, और ये सीक्रेट यहां बैठे सभी जानते हैं, और यही सीक्रेट हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कैसे हमारे अंदर से ही हम अपनी किस्मत को बनाएं। इसलिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आदरणीय संतोष दीदी जी से, क्या योगी हमेशा सारा दिन या हमेशा गुड फील करता है, हाई फील करता है, पॉजिटिव फील करता है, वाव फीलिंग रहती है, क्या उसको हमेशा सब कुछ अच्छा ही लगता है? चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई जगह हो, कोई मौसम हो, हर चीज उसको अच्छी ही अच्छी लगती है?
शुरू में तो नहीं लगता है अच्छा सब, परंतु जैसा जैसा योग की प्रैक्टिस होती जाती है और अनुभव होता जाता है तो बुरे में से भी योगी अच्छा निकाल सकता है, फिर सब अच्छा फील होता है, क्योंकि उसको ये पक्का हो जाता है कि हमारा कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है, हमारा कभी भी खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो साथी है वो सर्वशक्तिवान परमात्मा है। तो साथी की याद के कारण, परमात्मा के संग के कारण उसको बुरा भी सब कुछ अच्छा लगता है।
थैंक यू, थैंक यू। तो आप सब समझ जाना, जिस दिन से आपको सब कुछ अच्छा लगने लगे, सुबह से रात तक, आप समझ जाना आप योगी बन गए हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। मेरा अगला क्वेश्चन है आदरणीय गीता दीदी जी से। सुना है योगी माना हमेशा सात गुणों से भरपूर रहते हैं और सातों ही चक्र उनके खुले रहते हैं, ये सात गुणों के फ्लो के कारण। एक दो या तीन चक्र खुले हो तो क्या उसको भी योगी कहेंगे या सातों ही गुणों से भरपूर को ही कहेंगे?
नहीं, जैसे दीदी ने बताया ना कि ये भी एक यात्रा है ना, तो उसमें भी इनिशिएशन प्रारंभ में योग में द्वंद चलता है, क्योंकि अब तक हमने अपने मन बुद्धि दुनियावी बातों से भरी है, तो वो विचार भी आएंगे जो आदतें पड़ी हैं या जो हमने इंद्रिय रसों को भोगा है, तो वो चीजें भी बीच में आएगी और दूसरी ओर ज्ञान भी हमें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो वो प्रारंभ में एक द्वंद चलता है, पर जब एक स्पष्टता है कि यही श्रेष्ठ जीवन है और स्वयं परमात्मा हमें योग सिखा रहे हैं और ये जो वर्ल्ड साइकिल में समय चल रहा है वो एक महापरिवर्तन का समय है, अगर हम एक सुखमय स्वस्थ समाज लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें अपने से ही करनी है, तो हमारा धीरे धीरे उसमें विजयी होता जाता है। कि जैसे एक बाल्टी में गंदा पानी भरा है और अच्छा डालते जाएंगे तो एक समय आता है कि गंदा पूरा निकल जाता है और अच्छा हो जाता है, तो वो प्रारंभिक एक अवस्था होती है। और उसके बाद है फिर कि हम स्वचिंतन करते हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हैं, हम अपने आप के तरफ उन्मुख होते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, तो एक अंदर का सुख हमें अनुभव होने लगता है। और फिर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो तो ऐसा है कि जैसे आप एक शीतल जल के फवारे के नज़दीक जाओ तो अपने आप शीतलता का अनुभव होता है, मांगना नहीं पड़ता है। एक अग्नि के पास जाओ तो अपने आप गर्मी का अनुभव होता है, सूर्य के तरफ देखते हैं तो वो ऊर्जा और रोशनी मिलती है। सेम जब हमारा बुद्धि योग उस पिता से जुड़ता है तो हमें अपने आप वो सुख आनंद प्रेम शांति शक्ति का अनुभव होने लगता है। तो वो जो परमानंद है तो उसके आगे और कोई अट्रैक्शन और प्राप्तियां और चीजें फिर हमें सामान्य लगती है, उसका आकर्षण नहीं रहता है। और लास्ट वो है जो भाई साहब ने भी कहा कि समाधि माना एकाग्र अवस्था, मग्न अवस्था, उस श्रेष्ठ स्मृति में, प्रभु मिलन में। तो प्रारंभ से ही योग के हर स्टेज में प्राप्ति है, अनुभूति है, इसलिए शुरुआत में हम पुरुषार्थी योगी हैं और धीरे धीरे फिर हम परफेक्ट संपूर्ण योगी बनते जाते हैं।
थैंक यू। कहा गया है कि नकारात्मक विचारों के साथ आप सकारात्मक जीवन नहीं जी सकते। जीवन तो सभी जी रहे हैं, कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन योगी के थॉट्स डिफरेंट हैं। तो मेरा आदरणीय करुणा भाई जी से क्वेश्चन है कि योगी क्या सोच के सोता है, क्या सोच के जगता है, क्या सोच के कार्य करता है, उसकी रूटीन आम व्यक्ति के रूटीन से कैसे डिफरेंट है?
तो इन्होंने आप यहां से जाने के बाद आप क्या करेंगे या क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको आत्मा परमात्मा योग ये सब सिखा रहे हैं। आखिर जब कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो कर्म करना पड़ता है। तो आज का प्रश्न यही है कि कर्म का क्या इंपॉर्टेंस है। जब भगवान का ही हमारी जो योग हो गया, हमारा जीवन साथी भगवान है, तो फिर कर्म के लिए हमको सोचना है या नहीं? परंतु मेरा अनुभव यह है कि मैं जितना ईश्वर के लिए सोचता हूं या याद करता हूं, उनके साथ मेरा संबंध रखता हूं, और उनके लिए मुझे फेथ है कि भाई भगवान मेरे साथ है और वो मुझे सब कुछ अच्छा ही करेगा, परंतु साथ साथ मैंने ये भी अनुभव किया कि कर्म भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम सुबह 3:30 बजे उठ के ईश्वर को याद करते हैं, साधना करते हैं, तो इसी प्रकार उतना ही इम्पॉर्टेंस हम अपने कर्म के लिए भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि में एक एक नियम बना दिया है कि जैसे भारत के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसी प्रकार कर्म का भी एक लॉ है, और उसको हम सही नहीं करते हैं तो मुझे ये करने में भी कहने में भी संकोच नहीं है कि ईश्वर भी हमसे थोड़ा दूर हो जाता है। तो कर्म का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ईश्वर को भी संतुष्ट करना है तो ईश्वर जो हमको सिखाते हैं, कहते हैं, उस अनुसार कर्म करना भी बहुत जरूरी है। तो हम ये सोच ले कि भाई ईश्वर को ही हम याद करने से, ईश्वर की शक्ति से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो है ही, परंतु कर्म की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो इसलिए हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, जो भी मैं कर्म करता हूं वो केवल हाथ का भी नहीं, मन से होती है, क्योंकि सुबह उठने का संकल्प से उठते हैं। संकल्प नहीं आता है तो उठ नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार संकल्प से शुरू करके जो स्थूल से भी जो कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूं या ये कर रहा हूं, इसका फल क्या है, वो भी हमको पूर्ण रूप से ज्ञान देते हैं। जो हमारा योग एक है तो उसके साथ साथ ज्ञान भी एक है। तो पूर्ण ज्ञान उसको हम कहते हैं जो कर्म क्या करना है इस सृष्टि पे, इसके बारे में हम लोगों को शिक्षा मिलता है। तो इसीलिए रात को सोने के पहले हम लोग सारे दिन की जो भी चीज है, 5 मिनट के लिए भी हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि सब ठीक रहा आज, तो ईश्वर को अर्पित करते हुए दूसरे दिन के लिए फिर हम लोग हमारा श्रेष्ठ कर्म के बारे में सोचते हैं। तो अर्थात हम कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी कार्य करे, तो हमको अपने कर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, और वही हमारा साथ है जैसे ईश्वर साथ है।
थैंक यू, आपने सीक्रेट शेयर किया कि योगी सिर्फ कर्म ही नहीं करता है लेकिन उसके पीछे उसकी जो सोच, भावनाएं, इंटेंशंस, वो भी बहुत श्रेष्ठ है, और इसलिए उनके हर कर्म का गायन और पूजन होता है। आपने देखा होगा कई स्थानों पे मूर्तियों का भी दर्शन होता है, जैसे उठने का दर्शन, जागने का दर्शन, सोने का दर्शन, खाने का दर्शन, भोग लगाना, तो ये सब आपको खुशी होनी चाहिए। आपको पता चल रहा है कि कर्म तो आप और हम सब करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंट है, क्या टेस्ट उसमें ऐड करना है, वो पता चला। सभा में बैठे सभी रिलैक्स तो नहीं सोच है ये सोचकर कि प्रश्न सिर्फ मंच पर ही पूछे जा रहे हैं। आप सबके लिए भी एक क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, जब हम सब नींद करते हैं तो हमारी ये दो आंखें बंद होती है, लेकिन फिर भी हम सब ड्रीम्स देखते हैं, तो कौन सी आंख से देखते हैं? आपके पास कोई और भी आंख है क्या? कोई है आंख? हाथ खड़ा करें। है कौन सी आंख? थर्ड आई, मन की आंख, जो भी आप कहें, ज्ञान की आंख। हमने सुना है कि योगी जो है स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता है, उसकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। तो मेरा आदरणीय संतोष दीदी जी से क्वेश्चन है कि हमेशा इस संसार को इन दो नेत्रों से देखते हुए, इस संसार के हर इवेंट, हर व्यक्ति, हर बात, सबको देखते हुए, ये तीसरी आंख से योगी क्या देखता है, उससे उसको क्या डिफरेंट फीलिंग होती है, वो फीलिंग आज इस सभा को भी आपको करानी है।
वैसे तो इन दो नेत्रों से जो देखते हैं तो स्थूल शरीर दिखाई पड़ते हैं, जो स्थूल वस्तुएं हैं वो दिखाई पड़ती हैं, और सामने वाले को जब इन नेत्रों से ही सिर्फ देखते हैं तो उसके अवगुण ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब तीसरे नेत्र से देखना चालू करते हैं तो शरीर को देखते हुए भी नहीं देखने की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसा हम कोई समझो हीरा खरीद करने के लिए जाते हैं दुकान पर, तो वो हीरा हमको हाथ में नहीं देता है, डब्बी में देता है, बड़ी सुंदर डब्बी में देता है। डब्बी बड़ी होती है, हीरा बहुत छोटा होता है, पर हम डब्बी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम हीरे की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि हम कीमत हीरे की दे रहे हैं। तो उसी प्रकार जब भी हम किसी को भी देखते हैं तो उसके भ्रुकुटी के बीच में जो हीरा है, आत्मा है, उसको देखते हैं। और ये जो आत्मिक दृष्टि है तीसरे नेत्र की, ये आत्मिक दृष्टि जो है ये गुणग्राही दृष्टि है, रहम की दृष्टि है, कल्याण की दृष्टि है, ये सिविल आए। इसको देखने के बाद कोई भी विकार पैदा नहीं होता है, इसको देखने के बाद सर्व के लिए कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। ये आत्मिक दृष्टि तीसरा नेत्र जो है ये सुखदायी दृष्टि है। और जब हम दूसरे को देखते हैं तो उनकी विशेषताएं दिखाई देती है, उनकी अच्छाइयां दिखाई देती है, इसीलिए आपस में आत्मिक स्नेह जो है वो बढ़ता जाता है। इससे बड़ा फायदा होता है तीसरे नेत्र से देखने।
आप सबका तीसरा नेत्र खुल गया, बहुत अच्छा, थैंक यू। कहते हैं नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन आदरणीय मोहन भाई से है। शॉर्ट में हमें बताएं कि क्योंकि आप सभी जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं, आपके सामने बार बार ऐसी बातें आती हैं, तो आप हमें गाइड करिए कि कोई सामने से आए और हमें डिस्टर्ब करे, झगड़ा करे, तो योगी का क्या रिस्पॉन्स होगा?
बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है शुरू में, जैसे कि अगर कोई आके आपको अटैक कर रहा है, नॉट फिजिकली, मेंटली अपमान कर रहा है, आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, या ऐसी बहुत कई बात, तो ऐसे में कैसे मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखी जाए? तो नॉर्मली कहा जाता है, हाँ, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, दृष्टिकोण, अवर एटीट्यूड डिसाइड्स अवर एल्टीट्यूड। जितना हमारा एटीट्यूड अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, उतना हमारे जीवन की हाइट्स और बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमारे पांच टाइप के एटीट्यूड्स होते हैं। पहला अपने प्रति एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेल्फ, तो दैट इज सेल्फ एस्टीम। हम अपने को भी सबसे पहले बहुत ऊंची निगाह से देखें, जैसा भी दीदी बता रहे थे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये विकार नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हम उन विकारों के वशीभूत होकर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। तो इसीलिए एक्शन हो लेकिन रिएक्शन ना हो, वो तब होगा जब सेल्फ एस्टीम हमारा हाई होगा और इसके लिए जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं समान डेली हमें ऊंचा रखना है। दूसरा है एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, वो हमारा कैसा होना चाहिए, रियल लव का, प्रेम का एटीट्यूड। हर आत्मा जो है वो प्रेम स्वरूप है, जैसा बता रहे थे साधु की बात, उसमें प्रेम आत्मा का। इस समय ये आत्मा, ये मनुष्य कोई विकार के वशीभूत है, लेकिन वास्तव में ये प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो उससे क्या होगा, जब हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारे मन में उसके प्रति बदला लेने की भावना या ऐसा नेगेटिव फीलिंग नहीं डेवलप होगी। तीसरा एटीट्यूड है, इसमें ईश्वर का साथ बहुत आवश्यक है, तो इसलिए अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड शुड बी फुल ऑफ फेथ, ईश्वर के प्रति आस्था। ईश्वर मेरा साथी है, इसीलिए सदा उसको अगर हम साथ रखेंगे, और साथी हमारा कोई अगर पावरफुल होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती। कोई हमारे जीवन में समस्या आए, और सपोज इफ आई नो नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट और एनीबॉडी, तो जीवन में एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है कि मैं उनकी हेल्प लेके इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लूंगा। चौथा एटीट्यूड होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट, वो कई बार भुलाना मुश्किल होता है, तो एटीट्यूड टुवर्ड्स पास्ट हमारा कैसा होना चाहिए, अबाउट फॉरगिवनेस का, क्षमा के प्रति। क्योंकि व्यक्ति से डिफरेंसेस और प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसका नेगेटिविटी देखते हैं और क्षमा नहीं कर पाते। हर मनुष्य जब से पैदा होता है उसमें दो शक्तियां होती हैं, एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। लेकिन ट्रेजेडी लाइफ की यह है कि जो बात वो याद रखना चाहता है वो तो जाता है भूल, और जो बात भूल जानी चाहिए वो उसे बरसों तक याद रहती है। अब योग के द्वारा इस प्रॉब्लम को सहज कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, कौन सी बात याद रखने कौन सी भूलने की। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स द पास्ट शुड बी ए फॉरगिवनेस, एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द फ्यूचर इज होप, आशावादी। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी का जब पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इलेक्शन में भाषण कर रहे थे, तो किस अक्सर करके यही उदाहरण देते हैं, आधा गिलास भरा पानी खाली, तो खाली के प्रति एक एटीट्यूड होता है नेगेटिव और भरे के प्रति पॉजिटिव। लेकिन उन्होंने कहा वो भी खाली नहीं है, सब जानते उसमें क्या है, हवा। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, यहां पर यही बताते हैं, किसी में सारे अवगुण हो ऐसा नहीं हो सकता, और किसी में सारे गुण हो ऐसा नहीं। तो इसीलिए जो हमारे ऊपर कोई भी फिजिकल मेंटल टॉर्चर कर रहा है अटैक, तो उसको हम इस दृष्टिकोण से देखें कि इसमें भी बहुत गुण है। उस समय उनके गुणों को अगर सामने लाएंगे एकांत में बैठ के, तो क्या होगा, उसके प्रति हमारी निगेटिव फीलिंग डेवलप नहीं होगी, और उससे जैसी हम एनर्जी उसे भेजेंगे, पॉजिटिव भेजेंगे, तो धीरे धीरे उसकी भी एनर्जी चेंज होकर के नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और हमारे लिए वो समस्या सहज हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू। आप सबको देखकर सबके मन में इच्छा तो हो रही है योगी बनने की, लेकिन एक बात जो हम के सामने बहुत इमीडिएट आ जाती है कि जैसे ही आप थोड़ा भी ज्ञान ध्यान कुछ करने की दिशा में चलते हैं तो आप हाई होते जाते हैं, आप पॉजिटिव होते जाते हैं, लेकिन आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके आसपास के जो भी हैं, वो उतने हाई आपके साथ मैच नहीं हो पाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। और तब उनके मुख से कुछ ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं, अच्छा आप तो इतना मेडिटेशन करते हो फिर भी गुस्सा करते हो, आप तो वहां रोज जाते हो फिर भी ऐसा बिहेव करते हो, इससे तो हम अच्छे न जाते हैं न टाइम वेस्ट करते और फिर भी अच्छा रहते हैं। तो ऐसे जब सेंटेंस सुनते हैं तो एक पल के लिए लगता है ठीक है, हम उनकी तरह ही ठीक हैं। तो उसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि उनको तो लाइसेंस है कैसे भी बिहेव करें, लेकिन जो योगी है वो तो पॉजिटिव ही बिहेव करना चाहिए। तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है कि फैमिली में सब लो एनर्जी है और हम हाई होते जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में को हम कैसे हैंडल करें, हम फिर भी योगी बनने के लक्ष्य पे कैसे दृढ़ रहे, ये क्वेश्चन है मेरा आदरणीय गीता दीदी जी से।
हम सभी कलयुग के अंत समय में पहुंच गए हैं, ये तो आप सबको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो नेचुरली चारों ओर सभी चीजें तमो प्रधान है, आत्माओं में भी शक्ति नहीं है, विकृति है, और उसके बीच जब एक नया लक्ष्य लेकर और एक नई धारणाओं के साथ हम अपना पुरुषार्थ आरंभ करते हैं तो विरोध तो होता ही है। लोग पहली नजर से कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो हमें डगमगाने की भी कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कमेंट्स या ग्लानी की बातें वो हमें डगमगाने के लिए ही होती हैं। लेकिन जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, पिता परमात्मा को पहचान लेते हैं और समय को परख लेते हैं, तो हमारी लक्ष्य में इतनी मजबूती और दृढ़ता रहती है कि इस प्रकार की कमेंट से हमारा अपना लक्ष्य कमजोर नहीं होता है, लेकिन हम और अटेंटिव बनते हैं कि जब इन लोगों की बात सही है, कि जब मैं एक योग मार्ग पर चल रहा हूँ, ज्ञान मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को जितना महान बना सके मुझे बनाना चाहिए। तो हमें वो कमेंट्स बुरी भी नहीं लगेगी, उनके प्रति हमारी भावनाएं भी नहीं बिगड़ेगी, बल्कि हमारा पुरुषार्थ और तीव्र बनेगा कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनके दिखाना है। गांधी जी ने जब आजादी की मूवमेंट शुरू की तो सारा भारत गुलामी की जंजीर में सोया हुआ ही था, मन से स्वीकार करके ही बैठा था, परंतु वो संकल्प इतना मजबूत था और कल्याणकारी था कि कितने भी बातें आई, न सिर्फ अंग्रेजों के तरफ से लेकिन आजादी की मूवमेंट में जुड़े साथियों के तरफ से भी तो कितनी बातें आती। लेकिन जब हम एक निष्ठा से लक्ष्य को लेते हैं तो ये चीजें हमें फिर हिलाती नहीं हैं, बल्कि हमें ये लक्ष्य बन जाता है कि हाँ, मुझे और परफेक्ट बनना है। हम ये नहीं सोचते हैं, जो ऐसा सोच लेते हैं कि सब जीते हैं, चलो अपन भी ऐसे ही जिए, तो वो तो एक कॉमन लाइफ है, वो तो एक कॉमन प्रवाह है जिसमें सब बह रहे हैं और हम भी चल रहे हैं, तो हमारी विशेषता क्या हुई? हमने इतना ज्ञान सुना, समझा, अपने विवेक से ही समझा है, हमने कोई किसी के कहने पर तो ये पुरुषार्थ या मार्ग या लक्ष्य अपनाया नहीं है ना, हमारी अपनी अवेयरनेस से, हमारी अपनी चॉइस से है और हमने अपने बल पर ये लक्ष्य लिया है, तो हमें तो कोई बात कभी हिला नहीं सकती है। हम दिन प्रतिदिन और मजबूत होते हैं और अपने आप लोगों के सामने हम एग्जाम्पल बनते हैं, और तब लोग भी कहते हैं। मैं अपना अनुभव की बात बताऊं कि जब आज से 45 वर्ष पहले हमारे पिताजी ने हमको समर्पित किया, हम गुजरात के खेड़ा आनंद डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेवा पाटीदार है, तो बहुत शादियों में खर्च होता है, तो जब हम इसमें समर्पित हुए तो सारे संबंधी कहने लगे कि शादी करानी पड़े, खर्च करना पड़े, इसलिए अपनी बेटियों को साधु बना दिया। उस समय तो सबने नुक्ताचीनी की, लेकिन हम सबकी बुद्धि में स्पष्ट था कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई माँ बाप ने हमें थोड़ी बनाया, हमने खुद अपने उमंग से ये लक्ष्य लिया है। तो जब कुछ सालों के बाद, मैं समझती हूँ कि लगभग 15 सालों के बाद या 17 साल के बाद, जब हमारे लौकिक दादाजी ने शरीर छोड़ा तो फिर गांव में जाना हुआ। पिताजी ने प्रोग्राम रखा कि भी सबको ईश्वरीय ज्ञान दो, तो जब हम गए तो सारे ही लोग कहने लगे मित्र संबंधी कि भाई आप तो तर गए और हम डूब गए। अगर उस समय हम भी डूब जाते तो हम लोगों को क्या दे सकते थे। तो ये चीजें आती हैं, पर अगर मेरा अपनी क्लैरिटी है तो कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती।
वैसे भी योगी का फोकस औरों को समझाने पर इतना नहीं होता है, लेकिन योगी का फोकस नहीं, दीदी बताएंगी कि योगी का सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और एक परी फोकस होता है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ये इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय संतोष दीदी जी।
जब भी खुद में परिवर्तन होता है तो जो साथ रहने वाले हैं धीरे धीरे उनको भी समझा करके उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उनमें परिवर्तन नहीं होता है इसीलिए हम भी वैसे ही हो जावें, ऐसी बात नहीं है। परंतु हम जब भी उनको हमारी जीवन देखते हैं, जैसा इसकी अभी आपने गीता बहन का अनुभव सुना, इनकी जीवन देखने के बाद कितने लोगों ने प्रेरणा लिया, घर वालों ने भी प्रेरणा लिया, हमारा भी ऐसा ही है, हमारे घर वालों ने भी हमारी जीवन देख के प्रेरणा लिया। पहले तो बहुत यहाँ तक इतना अपोजिशन किया और उसके बाद तो फिर प्रेरणा लिया, सब कहने लगे लड़की होवे तो ऐसी होवे जो 21 स्कूल का उद्धार करे। पहले तो समझा हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और फिर उद्धार करने वाली लड़की लगा, तो अनेकों का उद्धार हुआ ना। आज हमारे घर के कम से कम 20 मेंबर चलते हैं, तो कैसा क्या चलते हैं, क्योंकि हमारी जीवन देख के चलते हैं ना। तो जब हम दृढ़ रहते हैं अपने संकल्पों के ऊपर तो हमें देख करके हमारा जो परिवार है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, वो सब इस तरफ लग जाते हैं और अपनी जीवन को चेंज कर लेते हैं। परंतु अगर हम आवाजों की तरफ ध्यान देंगे तो क्या होगा, वो बताते हैं ना महाभारत में, जब ये लड़ाई हो गई और पांडव जीत गए और वो पहाड़ी चढ़ने लगे तो उनको बताया गया तुम आगे चले गए, तुमको पीछे से आवाजें आएंगी, पर पीछे की 5 पांडव बच गए, बाकी तो कोई नहीं बचा। तुम पीछे की आवाजें अगर सुन के पीछे देखा तो गल के मर जाएंगे। तो हुआ क्या, उसमें से 4 तो मर गए, बाकी एक ही धर्मराज बिगर देखे कितनी भी आवाजें आई तो उसने देखा नहीं तो पहुंच गया। तो उसीलिए बड़ी प्राप्ति करनी है तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा ना। हम समझे कि हमको जल्दी तुरंत मिल जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए मूर्ति बनना है तो उसके लिए थोड़े हथौड़ी के ठोके सहन करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
थैंक यू दीदी। एसेंस है योगी मीन्स ओनली फोकस ऑन सेल्फ एंड ओनली फोकस ऑन व्हाट यू वांट। लास्ट में मंच पर उपस्थित महान राजयोगियों से एक एक मिनट हम आपके लिए मैसेज लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो बचपन से हमने हमेशा योगियों के लिए कुछ टाइटल्स सुने हैं, मन जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत और निद्रा जीत भी कहते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी से है कि योगी को निद्रा जीत कहते हैं, वैसे आप सबने अनुभव किया होगा नींद में हम सब ट्रैवल करते हैं, कहीं भी कोई भी बात आगे पीछे जिस बात का कोई कनेक्शन नहीं, तो एक नींद ऐसा टाइम है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड कहीं भी ट्रैवल करके आ जाता है। तो क्या योगी का कॉन्शियस माइंड पे तो फुल कंट्रोल पावर है, वो तो हमने सुन लिया सारे सेशन में, तो निद्रा जीत कहना माना क्या उसका सबकॉन्शियस माइंड पे भी फुल कंट्रोल है?
इस समय पर चाहे वो मध्यम वर्ग के हैं या श्रेष्ठ वर्ग के हैं या जिनको हम कहते हैं गरीब है, वो सभी व्यस्त है। सबके पास एक ही कॉमन चीज है जो नो टाइम, बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। तो व्यस्त केवल शरीर से नहीं है, मन से है। सबको विचार चलता है, बहुत विचार चलता है। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, सबकॉन्शियसनेस कहते हैं या ड्रीम कहते हैं, ये सब चीजें जो है इसमें जो नॉर्मल होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग तरह से हो रहा है। कई बार आजकल आम हो रहा है कि भाई गोली लेके नींद करने का ऐसी अवस्था भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो अपना जो कॉन्शियस है, भाई अभी सोने का टाइम है तो अब तो बंद करो, तो कल जब उठ जाएंगे तो देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, फिर भी प्रयास करते हैं तो फिर स्वप्न के रूप में भी कईयों को कई प्रकार के संकल्प आ जाता है या नींद पिटता है, तो ये सब होता है। तो इसलिए हम जो राजयोग जो सिखाते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि भले सारे दिन का जो कॉन्शियसनेस जो भी कुछ है वो आपको रात को सोने के पहले किस तरह से सब कुछ, जैसे हिसाब किताब दे करके आज का भाई पूरा हो गया, आज का अकाउंट पूरा हो गया, ऐसा करके दुकान से आ जाते हैं, ऑफिस से आ जाते हैं, ये ऐसे अपने मन का भी जो स्थिति को हम लोग एक क्लोज करते हुए तो अपनी उस दिन को समाप्त करते, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई कोई जरूरी नहीं है दूसरे दिन सब उठ जाते हैं, कुछ उसमें कम होते ही है। तो इसी तरह से हम अपने को भी समझा करके प्रभु के चरण में जाते हुए हम लोग ये कहते हैं कि प्रभु आप दूसरे दिन हम आप दे देंगे तो उसमें हम सब ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को अर्पित करते हुए, हल्का करते हुए हम फिर दूसरे दिन का शुरू करते हैं। तो इस प्रकार अपने आप को लाइट होने का और अपनी जो कॉन्शियसनेस को भी प्योर करने का डे टू डे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई जो साल के बाद एक बार जो किताब को हम ये करते, वो सिस्टम नहीं है। राजयोग में डे टू डे हम ये कर लेते हैं तो जिसके कारण आपको फ्रेशनेस होता है, एनर्जी होता है और पिछले दिन का रिपीट नहीं होता है, तो हम लोग उससे बेटर करने का करते हैं। तो इसमें हर बात का उसका प्रश्न है, इन्होंने भी कई बातें पूछा है, नेगेटिविटी, सेक्स का, जो भी कुछ है। तो जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो कम हो करके आत्मा एक शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाते हैं।
थैंक यू। समय को देखते हुए हम सिर्फ आदरणीय संतोष दीदी जी से नम्र अनुरोध करेंगे कि एक मिनट में आप सबको योगी जीवन जीने का बहुत ही सुंदर मैसेज दें।
सभी का लक्ष्य योगी जीवन जीने का है और उसका अनुभव करने का है, इसीलिए तो सब यहाँ आए हैं। तो सिर्फ इतना जरूर करें, ज्यादा नहीं परंतु रोज कम से कम एक घंटा इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते हुए ईश्वर को याद करने के लिए भी खास समय निकालें और उसके साथ साथ अपने को आगे बढ़ाने के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको भी समझने के लिए थोड़ा सा अगर समय निकालेंगे तो मैं समझती हूँ अपना जीवन हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। यहाँ पर आप आए तो ये तो हो गया, आपका आत्मा रूपी दीपक जग गया, परंतु हम लोग सब अनुभवी है कि दीपक जगाने के बाद अगर उसमें रेगुलर घी नहीं डालते, ग्रत नहीं डालते तो दीपक बुझ जाता है। तो यहाँ जब हमारे भाई बहन आते हैं ना तो बड़े खुश हो जाते हैं यहाँ के अनुभव से, और समझते हैं अभी हमारा तीसरा नेत्र थोड़ा थोड़ा खुला है, अभी उसको पूरा खोल के यहाँ से जाना और आगे भी उसमें ज्ञान का ग्रत डालते रहना और परमात्मा के साथ जो जागती ज्योति है उसके साथ अपना कनेक्शन करके रखना, तो आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा और आपका जीवन भी योगी जीवन कहलाएगा। ओम चंद।
थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। सचमुच हमने यही सुना है दीप से दीप जलाता चल, कभी ये नहीं सुना बल्ब से बल्ब जलाता चल। तो आप सब ने इन दीपकों को जगाया है और इनकी ओर से आप सब हाथ रेस करके करेंगे कि आप और अनेक दीपकों को अपने परिवार और अपने आपसे सबसे जो भी आपसे जुड़े हैं उनका भी आप दीप जगाएंगे हैंड वेव करके। यही आशा और विश्वास आज इन महान योगियों को देंगे। थैंक यू। अंत में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन आपका सदा रहे खुशियों से आबाद, बनो इतने काबिल न करनी पड़े फरियाद, आध्यात्मिकता से बनो योगी और ज्ञानवान। आप सबका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। दो मिनट साइलेंस में बैठेंगे।